からん
बातों में था, उन निंदा परक बातों
सारा ध्यान इसमें था। इसमें ध्यान नहीं था कि इसके बावजूद भी साधु क्यों मुस्कुराता हूं या चुपचाप बैठा हूं। मन कर रहा था बार बार कि इस निंदा का जवाब दें, और अगर संभव हो तो इस आदमी को जो कि निंदा कर रहा उठा करके बाहर फेंक गया। इतना तक मन करा पर कह दिया गया था कि शांत बैठना, जो भी घटित हो उसे देखना, जैसे तैसे बात आई गई हो गई, रहा नहीं गया। चार दिन हो गए, मन करता था, अभी भी मन करता था कि उस आदमी को कहीं मिल जाता तो हम भी चार कड़ी बातें सुनाते। उसके तो चार ही दिन लगे, हमारे पता नहीं कितने दिन गुजर जाते हैं जब ऐसी कोई घटना घटती और कुछ नहीं कह पाते हैं। तो दिन ऐसे गुजरते हैं कि बस चार दिन के बाद दूसरी घटना घट गई कि एक सज्जन व्यक्ति दिखने वाला आया और साधु जी की प्रशंसा कर लेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कहीं कि आप नहीं होते तो शायद हम सब के जीवन में अंधेरा ही रह जाता। आपने रोशनी दी है, आपने ज्ञान दिया है, आपने चलने का रास्ता दिया है, सहारा दिया है, सब कुछ तो दिया है। ऐसा सुनकर के उस युवक के मन में आया कि खड़े होकर के इस आदमी के पैर छू लो, इसको गले लगा लो, उसको क्या कहो, इसकी तो प्रशंसा करो। अब उसको प्रशंसा में रस आ रहा था, अब इसमें रस नहीं आ रहा था कि इस प्रशंसा के बावजूद भी साधु ठीक वैसा ही जैसा निंदा के समय मुस्कुराता था वैसा ही चुपचाप मुस्कुरा रहा है। इसमें रस नहीं आ रहा है। और जब वो व्यक्ति चला गया तब साधु ने कहा कि जाओ युवक, चार आठ दिन गुजर गए, शिक्षा तो पूरी हो गई, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। बहुत मुश्किल में पड़ा वो युवक कि अभी तो आपने कुछ कहा ही नहीं, अभी तो आप हमसे कुछ बोले ही नहीं, और आपने कैसे ये कह दिया कि हमने जाओ तुम्हें शिक्षा दे दी। साधु ने कहा कि शिक्षा तो मिल ही चुकी, तुम अपने भीतर झांक के देखो कि तुम्हारा रस जीवन की किस चीज में है। अगर जीवन का रस तुम्हें निंदा और प्रशंसा में आता है तो मानो कि अभी संसार तुम्हारा बहुत बड़ा है, सुख और दुख। तुम निंदा से सुख निकाल लेते हो, प्रशंसा से सुख निकाल लेते हो, अभी तुम्हें सुख दुख के संसार में बहुत समय गुजारना पड़ेगा। और अगर तुम ये देखते हो कि उन सुख और दुख के बीच मैं चुपचाप मुस्कुराता रहा तो तुम चाहो तो संसार से आज भी पार हो सकते हो। उपाय सिर्फ इतना ही है और विचार सिर्फ इतना ही है, शिक्षा सिर्फ इतनी सी ही है कि हम अपने जीवन में किस चीज में रस मानते हैं। मन तो आपसे मेरा करता है कि गहों की संसार अपार है, पर पता नहीं ऐसी क्या चीज है जो कि इसको नहीं कहने देती है। कितनी बार मन करा है कि आपसे कहूं कि संसार असार है, पर बताओ इतने दिन में मैंने कभी कहा, नहीं कह पाया, मन ही नहीं होता। अगर संसार असार होता तो फिर इस संसार में जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने कुछ नहीं पाया होता। नहीं, ये संसार असार नहीं है, ये जो नदियां दिखाई पड़ती हैं ये बुरी नहीं है, ये जो पर्वत दिखाई पड़ते हैं बुरे नहीं है, ये जो वृक्ष दिखाई पड़ते हैं ये बुरे नहीं है, ये जो जितना भी दृश्य जगत दिखाई पड़ता है ये बुरा नहीं है। असल में एक जो सृष्टि हमने अपने भीतर करके रखी है ना, वो जो सुख दुख की हमने सृष्टि करके रखी, अपनी विषय वासनाओं की जो सृष्टि करके रखी है, सूरज ने तो कभी आने से सुबह इनकार नहीं किया, उसने अपने नेचर को कभी चेंज नहीं किया, नदी ने बहना कभी बंद नहीं किया, पर्वत में ठहरा है तो कभी चलना शुरू नहीं किया, सबने अपने अपने स्वभाव को निभाया है। हम ही है जो अपनी सृष्टि को तहस नहस करने में लगे हैं, अपने भीतर की अपने स्वभाव को अपने स्वभाव से विपरीत जाकर के नष्ट करते चले जाए। इस वजह से कि जो श्रेष्ठतम है उसे नहीं चुना हमने, जो निम्नतम है उसे हम हमेशा चुनते हैं। हमने ये नहीं देखा है कि कौन इस सृष्टि के बीच भी संतुलित है और अपने जीवन को आसानी से जिया है। हमने हमेशा ये देखा कि कौन राइज कर रहा है और कौन गिर गया है, कौन उठा है। अगर हम थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं तो खुश हो लेते हैं, थोड़ा सा हमारा भौतिक उपलब्धियों का क्रम अगर गड़बड़ा जाता है तो हम दुख मान लेते हैं। आत्मा कितनी गिर गई, आत्मा में हम कितने ऊंचे उठ गए, इसमें हमें रस ही नहीं है। है भी तो थोड़ी देर के लिए है और बहुत सतही है। जितने भीतर से हमारे आना चाहिए उतने भीतर से नहीं है। सुनते हैं तो सुनने के भी तो दो ढंग हो सकते हैं। एक तो लापरवाही से सुन सकते हैं, एक सहमत और असहमत होकर सुन सकते हैं। लेकिन सुनने के साथ जो भीतर घटित हो रहा है उसे सुनते हुए सुनना तो बहुत कठिन है। मैं जो कह रहा हूं उससे आप सहमत भी हो सकते हैं, उससे असहमत भी हो सकते हैं। आप ऐसा सुन रहे हो जिसमें कि आपको लगे कि हाँ बहुत अच्छा है, हम सहमत हैं। ऐसा भी सुन सकते हैं कि नहीं है, आप जो कह रहे हैं उससे मैं असहमत हूं। लेकिन इन क्षणों में हम सबके भीतर क्या घटित हो रहा है वो हम सुन पा रहे हैं नहीं। इसीलिए तो हमारा सारा सुनना, यहां तक कि हमारा जीवन बहुत सुपरफिशियल हो गया, बहुत बाहरी हो गया है। हमारे भीतर तो वही सब कुछ पड़ा हुआ है। हम बाहर से बहुत सब दिखाई देने वाले लोग अपने भीतर झांक करके देखें तो उतने ही क्रूर और उतने ही हिंसक हैं जितना कि पशु जंगल में। कभी कभी झांक के देखें कितना निम्नतम में हम जीते हैं भीतर, और बाहर से कितने अधिक सख्त हो गए। बाहर हमने कितनी ऊंचाइयों को छूना चाहा पर भीतर से हम उतनी ही ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाए। निम्नतम का आनंद ही है, क्या करें। ऊंचाइयों का आनंद हमने कभी जाना ही नहीं। जितने भी निम्न विचार हैं उनमें हमें आनंद होता है, ऊंचे विचारों में नहीं। अच्छा देख लो ना, दो लोग बैठे हो तो कभी दो लोग किसी तीसरे की प्रशंसा करते पाए गए हो, बहुत रेयर केस। लेकिन दो लोग अगर बैठे हैं तो दूसरे की निंदा ही कर रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे, उसमें रस आता है। प्रशंसा सुनकर के एक बार हम चुप रह जाएंगे और कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन निंदा अगर हो रही होगी तो बहुत गौर से सुनेंगे और एक कमेंट करेंगे। वो तो हम पहले से जानते थे उनके बारे में, आज आपने कहा हम बहुत पहले से जानते। प्रशंसा हो रही होगी तो नहीं कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छे आदमी, हमने भी ऐसा सुना है। अगर कहीं कोई ये कह दे कि ईश्वर नहीं है तो कितने जल्दी मान लेंगे, और कोई कहे कि ईश्वर है तो हम खड़े हो जाएंगे तर्क देने के लिए कि आपने देखा। जब आपने नहीं देखा तो आप क्यों कह रहे हैं। असल में ईश्वर है ये मानने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि तब अपने ईश्वर नहीं होने की पीड़ा हो जाती है। और ईश्वर नहीं है तो फिर हम जैसे हैं वैसे ठीक है। जब कीचड़ में खड़े हों और कोई कमल के गीत गाना शुरू करे तो पीड़ा होती है कि हमारे पास नहीं है और हम कीचड़ में खड़े। और कोई कहे कि कमल वमल कुछ नहीं होता, ये सब फर्जी बातें हैं, तो हम राजी हो जाते हैं, उसी कीचड़ में राजी हो। हम तो चाहते ही हैं। हम फेल हो जाते हैं तो अपने फेल होने की पीड़ा उतनी नहीं होती जितना कि कोई और पास हो गया है इस बात की होती। और अगर सब फेल हो जाए तो अपने फेल होने की एक रत्ती पीड़ा। हम निम्नतम में रुचि लेते हैं। अगर कोई पास हो जाता है तब तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई कि हम क्यों फेल हो गए और हमें पास होना चाहिए। जब हम असफल हो जाते हैं तो इसकी पीड़ा नहीं होती, दूसरे लोग सफल हो रहे हैं इस बात की पीड़ा ज्यादा होती। तो अपनी असफलता आस्ती है, बुंदेलखंडी का शब्द आस्ती है, पीड़ा देती है। ये क्या चीज है, कभी आपने नहीं सोचा किस चीज में हमारा रस है। अपने उत्थान पतन में रस नहीं है, हमें तो सिर्फ जो बाहर घटित हो रहा है उसमें रस है। उसमें कोई रस नहीं है जो बाहर है, वो हमें सुख और दुख निरंतर देता चला जा रहा है। सुख दुख हम उसमें से निकाल रहे हैं, वो हमें दे नहीं रहा है, ये ध्यान रखना। बहुत सोचने जैसी चीज, निम्नतम और उच्चतम जितनी भी चीजें हैं सब हमें सुख दुख नहीं देती है, हम अपने भीतर उसे दबा लेते हैं खुद ही। एक बेटा है और पिता उससे हमेशा दुख पा रहे हैं, अपने मित्र से कहते हैं कि बेटा हमारी कहीं नहीं मानता। हर पिता के मन में शायद ये चीज होती है कि बेटा कहीं नहीं मानता है। और बेटे से जब पूछा कि भैया पिता की बात मान दिया करे, अब कितनी उनकी जिंदगी है, तो उन्होंने कहा कि, बेटे ने कहा कि मैं तो हमेशा मानने तैयार हूं, लेकिन पिता को तो कैसे भी करो बस उनको संतोष ही नहीं है, उनको सुखी नहीं है, वे देख ही नहीं पाते हैं वास्तविकता को। मैं अगर किसी दिन अच्छे कपड़े पहन लूं तो कहेंगे कि अब कहां कहां के रख दिया है, सुरैया जी को सौ और रहा है। पहन लो है ठीक है, जब तक हम जिंदा है तब तक तो पहन लो, फिर नहीं मिलने वाले। तो हम जरा संकोच में पड़ जाते हैं कि नहीं पहनना चाहिए अच्छे, तो हम थोड़े हल्के किस्म के पहनना शुरू करते हैं, और जैसे ही हल्के किस्म के पहन के निकलते हैं तो कहते कि देखो जहालत बना रही है, लगाओगे क्या हमारे। अरे कम से कम हम तो जिंदा है, जब तक तो अच्छे पहन लो। अब अगर अच्छे पहनते हैं तो ये कह रहे हैं कि ऐश कर लो, हमने कमा के रखा है। और अगर बुरे पहनते हैं तो कहते भैया जब तक जिंदा है, जब तक तो तुम अपने हमारे इज्जत को तो बचाए रखो। कैसा हमारा सोच है, किस तरह से हम अपने जीवन को सुख और दुख में इन सब चीजों से आनंद लेकर के डालते हैं, और ऊपर से एक आवरण हमने ओढ़ के रखा है अपने व्यक्तित्व को बहुत सुघर बनाने के लिए, बहुत सब बनाने के लिए हमने बाहर से। लेकिन कभी अपना एनालिसिस करें तो भी अपने भीतर झांक करके देखें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे भीतर वो सारी चीजें पड़ी हैं जिनमें हम रस ले रहे हैं। जीवन में तीन ही चीजें हैं जो कि सबको समझ में आने वाली है, जन्म होता है, मृत्यु आती है, बीच में जीना होता है, बस इतना ही है। इनके अलावा कोई और चीज है क्या? और उस जीने में प्रेम है, घृणा है, मैत्री है, सद्भाव है, तो दूसरी तरफ सद्भाव भी है, शत्रुता भी है, और क्या है इसके अलावा? जन्म के क्षण की याद नहीं है, मरते समय याद करने में पीड़ा होती है इसलिए भूलना ही अच्छा लगता है। बीच के जीवन में जरा मुश्किल खड़ी होती है, लेकिन तीनों को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, तीनों का हम संतुलन नहीं कर पा रहे हैं। हम जीवन का कोई संतुलन ढूंढ लें तो शायद हमारा जीवन सुखद होगा। श्रेष्ठतम और निम्नतम दोनों तरह के विचार हैं, दोनों के बीच कोई संतुलन हो सकता है? निंदा और प्रशंसा, सुख और दुख, सब कुछ हमें यहां मिलेगा, क्या उसके बीच कोई संतुलन हम पा सकते हैं? योगा कर्म सुकौशलम, योग तो वो है जो हमें कर्म की कुशलता देता है, जो कर्म करने में कुशल है वो योगी है। कर्म की कुशलता के मायने यही है कि हम जो भी करते हैं उससे बहुत संतुलित होकर करते हैं, उसे उसकी वास्तविकता में जान करके करते हैं। जन्म की वास्तविकता हम जानते हैं क्या? जीवन की वास्तविकता से हमारा कोई परिचय है? मृत्यु से हमने कभी कोई शिक्षा दी है? जीना के वास्तव में जीना है। भी सोचना कि एक बाहर का आवरण अलग और एक भीतर की वस्तु स्थिति अलग, इस तरह जीना वास्तव में जीना है। भारत किस वर्ण की बात करते हैं जो 60-70 वर्ष के बाद आता है, नहीं जो रोज रोज आ रहा है, जो अपनी दुर्दशा के लिए हम रोज मरते हैं, जो मर रहे तो वो वर्ण में दिखाई देता, वर्ण भी दिखाई देना चाहिए इस जीवन के साथ। इस तरह से हम अपनी आत्मा का पतन कर रहे हैं, वो क्या मरण नहीं है, प्रतिक्षण जीना पड़ रहा है, प्रतिक्षण मरना पड़ रहा है। ऐसा जीवन भी कहीं पर है जहां फिर मरना नहीं पड़ता, ऐसा जीना भी है जहां पर प्रेम और घना दोनों से पार हुआ जाता है। क्या वैसा जीना नहीं जीना चाहेंगे? उस युवक में तो वैसे ही जीने की शिक्षा चाहिए थी और उसे शिक्षा मिल गई थी कि सुख और दुख दोनों के बीच संतुलन बना करके जीना, दुख को दुख नहीं मानना, आया है चला जाएगा, और ध्यान रखना सुख को भी हर्षित नहीं होना, सुख को भी सुख नहीं मानना, क्योंकि वो भी आके चला जाता है। कितनी आसान सी प्रक्रिया दे रखी हमारे लिए कि अब सुख भी हम कहां कहां भटक रहे हैं, किस किस से जाकर के पूछ रहे हैं। हम अपने श्रेष्ठतम को देखें जो हमारे भीतर पड़ा है और उसे अधिक महत्व दें, निम्नतम में आनंद नहीं लें, और जो ऊंचाई है उनके भी ठीक ठीक अर्थ निकालें। अगर किसी ने कोई बहुत ऊंचा विचार दिया है तो उसके भी हम कई बार गलत अर्थ निकाल लेते हैं। अगर कोई हमसे कहे कि आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है, तो आपको तो ये निकालना चाहिए था कि शाश्वत की खबर करो, जो अशाश्वत है उसके पीछे मत पड़ो। आप हम निकाल लेते हैं कि ठीक तो कह रहे हैं, आत्मा शाश्वत है तो वो मरने वाली थोड़ी है, कर लेंगे फिर आत्मा की फिक्र। और तो ये जो जाने वाला है जरा इसकी फिक्र तो कर ले, जरा इसको तो समझना, नहीं तो ये तो आप खुद ही कह रहे हैं कि नश्वर है, तो खा पी करके मौज करके और इसको तो जरा संभाल ले। हम ऐसा अर्थ निकालना चाहें तो उसी से ऐसा अर्थ भी निकाल सकते हैं, निकाल रहे हैं। हम जो अच्छाइयां हैं उनको भी बुराई में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं, इस वजह से किस वजह से करते चले। हमें ठीक ठीक समझना चाहिए अपने जीवन को, अपने जीवन से खुद शिक्षा ले लेनी चाहिए। और एक बहुत छोटी सी घटना, इसके पहले की मृत्यु आए, जो व्यक्ति प्रतिक्षण मृत्यु का अनुभव करता है वो जीने का भी ठीक अनुभव करता है, उसका जीवन ही सार्थक है। क्योंकि गौर से देखें तो एक क्षण जीना, अगले क्षण मरना, उसके बीच में क्या है? प्रतिक्षण हम जन्म ले रहे हैं, प्रतिक्षण हम मर रहे हैं, उसके बीच का जीवन कितना सा है? ही नहीं, क्योंकि जो क्षण जन्म जन्म का है वही क्षण मरण का है। और जिसने अगर इसको पहचान दिया, इसको समझ लिया, उसका जीना तो वास्तव में जीना कर जाएगा। शुरू से लेकर आखिरी तक जैसा हम जीते हैं वो जीना वास्तविक नहीं है। जो प्रतिक्षण हम जन्म और मरण के बीच अपने लिए अपने जीवन का जो आनंद निकाल देते हैं वो वास्तव में जीना है। एक मैंने घटना पड़ी थी कहीं, अभी तो आपने टॉलस्टॉय की कहानी सुनी है, हाउ मच लैंड द मैन रिक्वायर, कितनी जमीन चाहिए एक आदमी को। एक और बहुत छोटी सी घटना है जो आज नहीं कह पाऊंगा कि अब कब बैठेंगे, आज नहीं कह पाऊंगा, क्षमा करिए। आज तो सिर्फ ये कहूंगा कि जो कुछ भी पाया उसे संभालिए, कुछ क्यों हुआ है।
इंस्टीट्यूट खोल रखा था, जो इस कला में माहिर नहीं होते हैं वो यहां नहीं जी पाते हैं ठीक से। कला सिखाता था, जीवन की कला सिखाता था, कहता था जीवन में बनाओ तो एक मास्टर पीस बनाना। खुद भी जब लोग उससे कहते थे कि वर्षों निकल जाते हैं तो कुछ नहीं बनाते, तो वो कहता था बनाऊंगा बनाऊंगा एक मास्टर पीस बनाऊंगा, उसी के लिए तो कर रहा हूं पूरी साल एक ही बनाऊंगा। तो ढेर सारी कला कल्पना होने के बाद भी वो कहता था कि बस एक ही बनाऊंगा, अभी तो मैं बनाना सीख रहा हूं, बनाना सीखने के लिए बहुत सारी कल्पना बनाऊंगा, लेकिन वो कृतियां मेरी नहीं होंगी, मैं तो सिर्फ एक कृति बनाऊंगा मास्टर पीस। उसके यहां पर दो और कलाकार थे, उसमें से एक कलाकार एक दिन अपने जीवन से निराश हो गया। कलाकार को तो अपने जीवन से निराश नहीं होना चाहिए, पर क्या करें, जिंदगी की बहुत सारी चीजें हैं जो उपलब्ध नहीं हो पाते, पर निराशा घेर लेती है। हम सब भी तो एक क्षण के लिए किसी आशा में जीते हैं, अगले क्षण फिर निराश हो जाते हैं, फिर एक आशा पकड़ती है फिर वो पूरी नहीं होती, तो फिर निराश होते होते तक दूसरी आशा घेर लेती है।
जो याद सागर सती
गुरु कहेंगे तेरी शुद्धात्म में निरत नित्य ही तो बेपाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने बड़े भगवान महावीर स्वामी के आचार्य कुंद कुंद स्वामी के आचार्य गुरु विद्या सागर मुनि महाराज एक साधु के पास एक युवक गया था एक बार शिक्षा पाने के लिए। जो जीवन हमें निरंतर शिक्षा देता है वो जीवन हमारे पास है, इसके बावजूद भी हम तीर्थंकरों की तरह इतने सक्षम नहीं है कि अपने ही जीवन से शिक्षा पाके अपने जीवन को कृतार्थ करें। तब जरूरी हो जाता है कि जिन्होंने अपने जीवन को परिष्कृत किया है उनके चरणों में कुछ शिक्षा पाए। पहुंचा था वो साधु के पास और कहा था कि जीवन के लिए कोई शिक्षा दे। साधु ने कहा कि एक दिन में तो संभव ना होगा और कितने दिन लग जाएंगे ये भी नहीं कहा जा सकता। ठहरो तब तक ठहरो जब तक की शिक्षा ना मिल जाए। कितना मुश्किल होता है हम एक क्षण के अंदर पूरे जीवन की शिक्षा पाना चाहते हैं। हम जरा भी तो नहीं ठहरते हैं कि अब तो ठहरे हैं उन चरणों में ठहरे हैं जिनसे की शिक्षा मिलेगी और जब तक नहीं मिल जाएगी तब तक ठहरे रहेंगे। माने अगले क्षण मिल जाएगी पर ठहर तो जाए, बस शिक्षा मिल जाए और कब मिल जाए और चले जाए। वो युवक ठहर गया साधु के चरणों में। साधु ने कहा कि ठहरे तो हो पर एक बात का ध्यान रखना, जो कुछ भी यहां घटित हो उसे सिर्फ देखना, कोई कमेंट नहीं करना, कुछ कहना नहीं, बस सिर्फ देखना। बहुत कठिन है ये भी, पर अब शिक्षा पानी है तो युवक ने ये भी स्वीकार कर लिया। और दो चार दिन के बाद एक दिन एक व्यक्ति आया और आकर के साधु को बना बुरा कहना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दिया, ठगते हो लोगों को, स्वर्ग नरक का धोखा दे करके ठगते हो, दुनिया की बातें मनाते हो, पता नहीं उसने क्या क्या कहा। अब बहुत कसमसाया वो युवक कि इसको हम बहुत कड़ी बातें सुनाते जो ये साधु जी को ऐसी कड़ी बातें कह रहे हैं। उसका सारा ध्यान उन कड़ी बातों में था, उन निंदा परक बातों में था, सारा ध्यान उसमें था। इसमें ध्यान नहीं था कि इसके बावजूद भी साधु क्यों मुस्कुराता हुआ चुपचाप बैठा हुआ प्रमाण कर रहा था बार बार कि इस निंदा का जवाब क्यों, और अगर संभव हो तो इस आदमी को जो कि निंदा कर रहा उठा करके बाहर फेंक गया। इतना तक मान करा पर कह दिया गया था कि शांत बैठना, जो भी घटित हो उसे देखना, जैसे तैसे बात आई गई हो गई, रहा नहीं गया। चार दिन हो गए, मन करता था, अभी भी मन करता था कि उस आदमी को कहीं मिल जाता तो हम भी चार कड़ी बातें सुना। उसके तो चार ही दिन लगे, हमारे पता नहीं कितने दिन गुजर जाते हैं जब ऐसी कोई घटना घटती हो और कुछ नहीं कह पाते हैं। तो दिन ऐसे गुजरते हैं कि बस चार दिन के बाद दूसरी घटना घट गई कि एक सज्जन व्यक्ति दिखने वाला आया और साधु जी की प्रशंसा कर लेता। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कहीं कि आप नहीं होते तो शायद हम सब के जीवन में अंधेरा ही रह जाता। आपने रोशनी दी है, आपने ज्ञान दिया है, आपने चलने का रास्ता दिया है, सहारा दिया है, सब कुछ तो दिया है। ऐसा सुन करके उस युवक के मन में आया कि इस खड़े होकर के इस आदमी के पैर छू लो, इसको गले लगा लो, उसको क्या कहो, इसकी तो प्रशंसा करो। और उसको प्रशंसा में रस आ रहा था। अब इसमें रस नहीं आ रहा था कि इस प्रशंसा के बावजूद भी साधु ठीक वैसा ही जैसा निंदा के समय मुस्कुरा था वैसा ही चुपचाप मुस्कुरा रहा है। इसमें रस नहीं आ रहा। और जब वो व्यक्ति चला गया तब साधु ने कहा कि जाओ युवक, चार आठ दिन गुजर गए, शिक्षा तो पूरी हो गई, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। बहुत मुश्किल में पड़ा वो युवक की, अभी तो आपने कुछ कहा ही नहीं, अभी तो आप हमसे कुछ बोले ही नहीं, और आपने कैसे ये कह दिया कि हमने जाओ तुम्हें शिक्षा दे दी। साधु ने कहा कि शिक्षा तो मिल ही चुकी है, तुम अपने भीतर झांक के देखो कि तुम्हारा रस जीवन की किस चीज में है। अगर जीवन का रस तुम्हें निंदा और प्रशंसा में आता है तो मानो कि अभी संसार तुम्हारा बहुत बड़ा है, सुख और दुख। तुम निंदा से सुख निकाल लेते हो, प्रशंसा से सुख निकाल लेते हो, अभी तुम्हें सुख दुख के संसार में बहुत समय गुजारना पड़ेगा। और अगर तुम ये देखते हो कि उन सुख और दुख के बीच मैं चुपचाप मुस्कुराता रहा तो तुम चाहो तो संसार से आज भी पार हो सकते हो। उपाय सिर्फ इतना ही है और विचार सिर्फ इतना ही है, शिक्षा सिर्फ इतनी सी ही है कि हम अपने जीवन में किस चीज में रस मानते हैं। मन तो आपसे मेरा करता है कि गौ की संसार अपार है, पर पता नहीं ऐसी क्या चीज है जो कि इसको नहीं कहने देती है। कितनी बार मन करा है कि आपसे गौ की संसार अपार है, पर बताओ इतने दिन में मैंने कभी कहा, नहीं कह पाया, मन ही नहीं होता। अगर संसार असार होता तो फिर इस संसार में जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने कुछ नहीं पाया होता। नहीं, ये संसार असार नहीं है, ये जो नदियां दिखाई पड़ती हैं ये बुरी नहीं है, ये जो पर्वत दिखाई पड़ते हैं बुरे नहीं है, ये जो वृक्ष दिखाई पड़ते हैं ये बुरे नहीं है, ये जो जितना भी दृश्य जगत दिखाई पड़ता है ये बुरा नहीं है। असल में एक जो सृष्टि हमने अपने भीतर करके रखी है ना, वो जो सुख दुख की हमने सृष्टि करके रखी, अपनी विषय वासनाओं की जो सृष्टि करके रखी है, सूरज ने तो कभी आने से सुबह इनकार नहीं किया, उसने अपने नेचर को कभी चेंज नहीं किया, नदी में बहना कभी बंद नहीं किया, पर्वत में ठहरा है तो कभी चलना शुरू नहीं किया, सबने अपने अपने स्वभाव को निभाया है। हम ही है जो अपनी सृष्टि को तहस नहस करने में लगे हैं, अपने भीतर की अपने स्वभाव को अपने स्वभाव से विपरीत जाकर के नष्ट करते चले हैं। सिर्फ इस वजह से कि जो श्रेष्ठतम है उसे नहीं चुना हमने, जो निम्नतम है उसे हम हमेशा चुनते हैं। हमने ये नहीं देखा है कि कौन इस सृष्टि के बीच भी संतुलित है और अपने जीवन को आसानी से दिया है। हमने हमेशा ये देखा कि कौन राइज कर रहा है और कौन गिर गया है, कौन उठा है। अगर हम थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं तो खुश हो लेते हैं, थोड़ा सा हमारा भौतिक उपलब्धियों का क्रम अगर गड़बड़ा जाता है तो हम दुख मान लेते हैं। आत्मा कितनी गिर गई, आत्मा में हम कितने ऊंचे उठ गए, इसमें हमें रस ही नहीं है भी तो थोड़ी देर के लिए है और बहुत सतही है। जितने भीतर से हमारे आना चाहिए उतने भीतर से नहीं है। सुनते हैं तो सुनने के भी तो दो ढंग हो सकते हैं, एक तो लापरवाही से सुन सकते हैं, एक सहमत और असहमत होकर सुन सकते हैं। लेकिन सुनने के साथ जो भीतर घटित हो रहा है उसे सुनते हुए सुनना तो बहुत कठिन है। मैं जो कह रहा हूं उससे आप सहमत भी हो सकते हैं, उससे असहमत भी हो सकते हैं। आप ऐसा सुन रहे हो जिसमें कि आपको लगे कि हाँ बहुत अच्छा है, हम सहमत हैं। ऐसा भी सुन सकते हैं कि नहीं है, आप जो कह रहे हैं उससे मैं असहमत हूं। लेकिन इन क्षणों में हम सबके भीतर क्या घटित हो रहा है वो हम सुन पा रहे हैं। इसीलिए तो हमारा सारा सुनना, यहां तक कि हमारा जीवन बहुत सुपरफिशियल हो गया, बहुत बाहरी हो गया है। हमारे भीतर तो वही सब कुछ पड़ा हुआ है। हम बाहर से बहुत सब दिखाई देने वाले लोग अपने भीतर झांक करके देखें तो उतने ही क्रूर और उतने ही हिंसक है जितना कि पशु जंगल है। कभी कभी झांक के देखें कितना निम्नतम में हम जीते हैं भीतर, और बाहर से कितने अधिक सख्त हो गए। बाहर हमने कितनी ऊंचाइयों को छूना चाहा पर भीतर से हम उतनी ही ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाए। निम्नतम का आनंद ही है, क्या करें, ऊंचाइयों का आनंद हमने कभी जाना ही नहीं। जितने भी निम्न विचार हैं उनमें हमें आनंद होता है, ऊंचे विचारों में नहीं। अच्छा देख लो ना, दो लोग बैठे हैं तो कभी दो लोग किसी तीसरे की प्रशंसा करते पाए गए हैं, बहुत रेयर केस। लेकिन दो लोग अगर बैठे हैं तो दूसरे की निंदा ही कर रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे, उसमें रस आता है। प्रशंसा सुनकर के एक बार हम चुप रह जाएंगे और कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन निंदा अगर हो रही होगी तो बहुत गौर से सुनेंगे और एक कमेंट करेंगे। वो तो हम पहले से जानते थे उनके बारे में, आज आपने कहा हम बहुत पहले से जानते। प्रशंसा हो रही होगी तो नहीं कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छे आदमी, हमने भी ऐसा सुना है। अगर कहीं कोई ये कह दे कि ईश्वर नहीं है तो कितनी जल्दी मान लेंगे, और कोई कहे कि ईश्वर है तो हम खड़े हो जाएंगे तर्क देने के लिए कि आपने देखा है, तो आपने नहीं देखा तो आप क्यों कह रहे हैं। असल में ईश्वर है ये मानने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि तब अपने ईश्वर नहीं होने की पीड़ा हो जाती है। और ईश्वर नहीं है तो फिर हम जैसे हैं वैसे ठीक है। जब कीचड़ में खड़े हों और कोई कमल के गीत गाना शुरू करे तो पीड़ा होती है कि हमारे पास नहीं है और हम कीचड़ में खड़े। और कोई कहे कि कमल वमल कुछ नहीं होता, ये सब फर्जी बातें हैं, हम राजी हो जाते हैं उसी कीचड़ में राजी हो, हम तो चाहते ही हैं। हम फेल हो जाते हैं तो अपने फेल होने की पीड़ा उतनी नहीं होती जितना कि कोई और पास हो गया इस बात की होती है। और अगर सब फेल हो जाए तो अपने फेल होने की एक रत्ती पीड़ा। हम निम्नतम में रुचि देते हैं, अगर कोई पास हो जाता है तब तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई कि हम क्यों फेल हो गए और हमें पास होना चाहिए। जब हम असफल हो जाते हैं तो इसकी पीड़ा नहीं होती, दूसरे लोग सफल हो रहे हैं इस बात की पीड़ा ज्यादा होती है। तो अपनी असफलता आस्ती है, बुंदेलखंडी का शब्द आस्ती है, पीड़ा देती है। ये क्या चीज है कभी आपने नहीं सोचा, किस चीज में हमारा रस है? अपने उत्थान पतन में रस नहीं है हमें, तो सिर्फ जो बाहर घटित हो रहा है उसमें रस है। जो हमारे भीतर है उसमें कोई रस नहीं है। जो बाहर है वो हमें सुख और दुख निरंतर देता चला रहा है, सुख दुख हम उसमें से निकाल रहे हैं, वो हमें दे नहीं रहा है। ये ध्यान रखना, बहुत सोचने जैसी चीज है। निम्नतम और उच्चतम जितनी भी चीजें हैं वे सब हमें सुख दुख नहीं देती है, हम अपने भीतर उसे दबा लेते हैं खुद ही। एक बेटा है और पिता उससे हमेशा दुख पा रहे हैं, और अपने मित्र से कहता हूँ कि बेटा हमारी कहीं नहीं मानता। हर पिता के मन में शायद ये चीज होती है कि बेटा कहीं नहीं मानता है। और बेटे से जब पूछा कि भैया पिता की बात मान दिया करे, अब कितनी उनकी जिंदगी है, तो उन्होंने कहा कि बेटे ने कहा कि मैं तो हमेशा मानने तैयार हूं, लेकिन पिता को तो कैसे भी करो बस उनको संतोष ही नहीं है, उनको सुखी नहीं है, वे देख ही नहीं पाते हैं वास्तविकता को। मैं अगर किसी दिन अच्छे कपड़े पहन लो तो कहेंगे कि अब कहां कहां के रख दिया है, सुभैया जी को 100 और गांव है। पहन लो है ठीक है, जब तक हम जिंदा है तब तक तो पहन लो, फिर नहीं मिलने वाले। तो हम जरा संकोच में पड़ जाते हैं कि नहीं पहनना चाहिए अच्छे, तो हम थोड़े हल्के किस्म के पहनना शुरू करते हैं। और जैसे ही हल्के किस्म के पहन के निकलते हैं तो कहते कि देखो जहालत बना रही है, लगाओगे क्या हमारे, अरे कम से कम हम तो जिंदा है, जब तक तो अच्छे पहन लो। अब अगर अच्छे पहनते हैं तो ये कह रहे हैं कि ऐश कर लो, हमने कमा के रखा है। और अगर बुरे पहनते हैं तो कहते भैया जब तक जिंदा है जब तक तो तुम अपने हमारे इज्जत को तो बचाए रखो। कैसा हमारा सोच है, किस तरह से हम अपने जीवन को सुख और दुख में इन सब चीजों से आनंद लेकर के डालते हैं, और ऊपर से एक आवरण हमने ओढ़ के रखा है अपने व्यक्तित्व को बहुत सुघड़ बनाने के लिए, बहुत सब बनाने के लिए हमने बाहर से, लेकिन कभी अपना एनालिसिस करें तो भी अपने भीतर झांक करके देखें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे भीतर वो सारी चीजें पड़ी हैं जिनमें हम रस ले रहे हैं। जीवन में तीन ही चीजें हैं जो कि सबको समझ में आने वाली है, जन्म होता है, मृत्यु आती है, बीच में जीना होता है, बस इतना ही है। इनके अलावा कोई और चीज है क्या? और उस जीने में प्रेम है, घृणा है, मैत्री है, सद्भाव है, तो दूसरी तरफ असद्भाव भी है, शत्रुता भी है, और क्या है इसके अलावा? जन्म के क्षण की याद नहीं है, मरते समय याद करने में पीड़ा होती है, इसलिए भूलना ही अच्छा लगता है। बीच के जीवन में जरा मुश्किल खड़ी होती है, लेकिन तीनों को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, तीनों का हम संतुलन नहीं कर पा रहे हैं। हम जीवन का कोई संतुलन ढूंढ लें तो शायद हमारा जीवन सुखद होगा। श्रेष्ठतम और निम्नतम दोनों तरह के विचार हैं, दोनों के बीच कोई संतुलन हो सकता है? निंदा और प्रशंसा, सुख और दुख, सब कुछ हमें यहां मिलेगा, क्या उसके बीच कोई संतुलन हम पा सकते हैं? योगा कर्म सुकौशलम, योग तो वो है जो हमें कर्म की कुशलता देता है, जो कर्म करने में कुशल है वो योगी है। कर्म की कुशलता के मायने यही है कि हम जो भी करते हैं उससे बहुत संतुलित होकर करते हैं, उसे उसकी वास्तविकता में जान करके करते हैं। जन्म की वास्तविकता हम जानते हैं क्या? जीवन की वास्तविकता से हमारा कोई परिचय है? मृत्यु से हमने कभी कोई शिक्षा दी है?
से युक्त होकर के पाप लिप्त होकर के जीना वास्तव में जीना है।
लोगों के लिए हम रोज मर रहे हैं, तो वो पैसे के लिए जो मर रहे हैं तो वो मरण नहीं दिखाई देता, वो मरण भी दिखाई देना चाहिए इस जीवन के साथ। इस तरह से हम अपनी आत्मा का पतन कर रहे हैं, वो तो मरण नहीं है, प्रतिशत जीना पड़ रहा है, प्रतिशत मरना पड़ रहा है। ऐसा जीवन भी कहीं पर है जहां फिर मरना नहीं पड़ता, ऐसा जीना भी है जहां पर प्रेम और खाना पैरों से पार हो जाते हैं। क्या वैसा जीवन नहीं जीना चाहेंगे? उस युवक में तो वैसे ही जीने की शिक्षा चाहिए थी, और उसे शिक्षा मिल गई थी कि सुख और दुख दोनों के बीच संतुलन बना करके जीना, सुख नहीं मानना क्योंकि वो भी आके चला जाता है। कितनी आसान सी प्रक्रिया दे रखी हमारे लिए कि अब सुख भी हम कहां कहां भटक रहे हैं, किस किस से जाकर के पूछ रहे हैं। हम अपने श्रेष्ठ धन को देखें जो हमारे भीतर पड़ा है, और उसे अधिक महत्व दें, निम्नतम में आनंद नहीं लें, जो ऊंचाई है उनके भी ठीक ठीक अर्थ निकालें। अगर किसी ने कोई बहुत ऊंचा विचार दिया है तो उसके भी हम कई बार गलत अर्थ निकाल लेते हैं। अगर कोई हमसे कहे कि आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है, तो आपको तो ये निकालना चाहिए था कि शाश्वत की खबर करो, जो अशाश्वत है उसके पीछे मत करो। आप हम निकाल लेते हैं कि ठीक तो कह रहे हैं आत्मा शाश्वत है, तो वो मरने वाली थोड़ी है, कर लेंगे फिर आत्मा की फिक्र। और तो ये जो जाने वाला है ना उसकी फिक्र तो करने जा रहा है, उसको तो खबर नहीं, तो ये तो आप खुद ही कह रहे हैं कि नष्ट है, तो खा पी करके मौज करके और इसको तो जरा संभाले लो। हम ऐसा अर्थ निकालना चाहें तो उसे फिर ऐसा अर्थ भी निकाल सकते हैं, निकाल रहे हैं। हम जो अच्छाइयां हैं उनको भी बुराई में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं, किस वजह से करते चले जा रहे हैं। हमें ठीक ठीक समझना चाहिए अपने जीवन को, अपने जीवन से खुद शिक्षा ले लेनी चाहिए। और एक बहुत छोटी सी घटना, इसके पहले की मृत्यु आए, जो व्यक्ति प्रतिशत मृत्यु का अनुभव कर रहा है वो जीने का भी ठीक अनुभव कर रहा है, उसका जीवन ही सार्थक है। क्योंकि गौर से देखें तो एक क्षण जीना, अगले क्षण मरना, उसके बीच में क्या है? प्रतिशत हम जन्म ले रहे हैं, प्रतिशत हम मर रहे हैं, उसके बीच का जीवन कितना सा है? ही नहीं। क्योंकि जो क्षण जन्म जन्म का है वही क्षण मरण का है, और जिसने अगर इसको पहचान दिया, इसको समझ लिया, उसका जीना तो वास्तव में जीना कहता है। शुरू से लेकर आखिरी तक जैसा हम जीते हैं वो जीना वास्तविक नहीं है, जो प्रतिशत हम जन्म और मरण के बीच अपने लिए अपने जीवन का जो आनंद निकाल देते हैं वो वास्तव में जीना है। एक मैंने घटना पड़ी थी कहीं, अभी तो आपने टॉलस्टॉय की एक कहानी सुनी है, हाउ मच लैंड द मैन रिक्वायर, कितनी जमीन चाहिए आदमी को। एक और बहुत छोटी सी घटना है, प्यार नहीं कह पाऊंगा कि अब कब बैठेंगे, बात नहीं कह पाऊंगा, क्षमा करिए। आज तो सिर्फ ये कहूंगा कि जो कुछ भी पाया उसे संभालिए, जो कुछ खो गया है उसे भूल जाइए, बहुत कुछ है अभी जो पाया जा सकता है। ए मास्टर पीस, क्या है वो मास्टर पीस? बहुत छोटी सी घटना है। एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, एक बहुत बड़ा कलाकार था, उसने अपना इंस्टीट्यूट खोल रखा था, वो सिखा रहा था, कला सिखाता था, तो कोई नहीं सिखाता कला, न जीने की बाहर होने की। अब तो लोग कला सिखाते हैं दूसरे को, पैसे जी पाते हैं ठीक से, और उत्तम से बताता है जीवन की कला सिखाता। बेटा का जीवन में बनाओ तो एक मास्टर पीस बनाता। और तब भी जब लोग उससे कहते थे कि वर्षों निकल जाते हैं तुम कुछ नहीं बताते, तो वो कहता था बनाऊंगा बनाऊंगा एक मास्टर पीस बनाऊंगा। उसी के लिए तो कर रहा हूं पूरी साल एक ही बनाऊंगा। ढेर सारी कला कल्पना करने के बाद भी वो कहता था कि बस एक ही बनाऊंगा, अभी तो मैं बनाना सीख रहा हूं। बनाना सीखने के लिए बहुत सारी कृतियां बनाऊंगा, लेकिन वो कृतियां मेरी नहीं होंगी, मैं तो सिर्फ एक कृति बनाऊंगा मास्टर पीस। उसके यहां पर दो और कलाकार थे, उसमें से एक कलाकार एक दिन अपने जीवन से निराश हो गया। कलाकार को तो अपने जीवन से निराश नहीं होना चाहिए, पर क्या करें, जिंदगी की बहुत सारी चीजें हैं जो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, पर निराशा घेर लेती है। हम सब भी तो एक क्षण के लिए किसी आशा में जीते हैं, अपने क्षण से निराश हो जाते हैं, फिर एक आशा पकड़ती है, फिर वो पूरी नहीं होती, तो फिर निराश होते होते तब दूसरी आशा घेर लेती है कि ऐसे चलता चला जाता है। सुख आता है, चंदा तो हर्षित हो लेते हैं, बढ़ाना चाहते हैं उस सुख का समय, तो अपने क्षण दुख आ जाता है, तो काटते हैं जिस किसी तरह से, कम करना चाहते हैं उस समय को, लेकिन समय तो कभी कम नहीं होता, वो तो अपनी रफ्तार से चला जाता, हमारी जिंदगी को कम कर देता है। और ऐसे ही वो निराश हो गया अपने जीवन से, बहुत समझाया उसे उस कलाकार ने कि तुम निराश मत हो। पर मैं ऐसा निराश हुआ कि रोज रोज वो ये देखता था कि आज बस आप मर जाऊंगा, शायद आप मर जाऊंगा। और उसके कमरे में एक खिड़की थी, उस खिड़की के बाहर एक पेड़ था, गर्मी का मौसम था, पेड़ से पत्ते गिरते थे। वो कहता था कि जैसे ये पेड़ से कि पत्ते गिरते चले जा रहे हैं ना, ऐसे ही मेरा जीवन नष्ट होता चला रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एक वो है जो ये कहता है कि जब जीवन थोड़ा सा ही शेष रहा है तो मैं मास्टर पीस बनाऊंगा, और एक ये है जो निराश है, जो कह रहा है कि जीवन में जब मरना ही है तो जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं करना। और वो कलाकार पूरा कलाकार बनने से पहले ही मरने का इंतजार करने लगा। रोज हवा चलती थी, जब तेज हवा चलती थी तो ढेर पत्ते उड़ जाते थे, तो वो बिस्तर पर लेट जाता था कि अब तो बहुत कम रहेगा मेरा जीवन, कितने पत्ते टूट करके गिर गए। उसने उस वृक्ष के जीवन को जैसे अपना जीवन मान लिया था, रोज पत्ते टूटते थे और उसे लगता था कि जैसे वो मर रहा है। बिस्तर पर पड़ गया, डॉक्टर आए, कोई तो नहीं इलाज कर पाता। जीवन से हम हार जाते हैं, जीवन का संतुलन नहीं पा पाते हैं, तो कोई नहीं बचा सकता। एक और जो दूसरा कलाकार था, उसने सोचा कि कुछ उपाय तो करना चाहिए। सब लोग जिस कलाकार के पास सीखते थे उसे दादा कहते थे, चलो दादा के पास कहें कि उसे संभालिए। लेकिन वो भी क्या करे, उसने कहा कि सुनो, उसे जीवनी शक्ति दो, उसके खिड़की पर कर्टेन लगवा दो, वो बाहर नहीं देखेगा, कम से कम देखेगा तो संभव है कि उसे जीवन से आशा रखे। और कम उससे कि पत्ते जितने रोज टूटते हैं उससे कई गुने आ जाते हैं। समझाया उसे, लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े वो कहता था कि ये कर्टेन तो हटाओ जरा, खिड़की से मैं देख लूं कि आज कितने पत्ते शेष रह गए। अब तो बस थोड़े से रह गए होंगे, कब तो बहुत पानी की आवाज आई है, सारे दिन पानी गिरा, अब बस मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा।
देखा तो वृक्ष पर सिर्फ एक पत्ता था, सिर्फ एक पत्ता था। अब तो वो युवक कलाकार इस पर पड़ गया, उसने कहा एक पत्ता सिर्फ, वो तो बस टूटता ही है, कल सुबह तो शायद मैं देख ही नहीं पाऊंगा। वो बिस्तर पर लेट गया। जो दूसरा युवक उसके साथ था उसने दादा को जाके खबर दी कि दादा सिर्फ एक पत्ता है वृक्ष पर। दादा थोड़ी सी रोशनी है जीवन की, वो जीवन का संतुलन नहीं पा पा रहा है, क्या आप उसे जीवन का संतुलन दे पाएंगे? मुस्कुरा दिया और मन मन उसने सोचा कि